ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। वर्तमान सत्ता समीकरण में कोई समस्या नहीं है और समझदारी से सत्ता समीकरण को निरंतरता मिलेगी, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। नेपाली कांग्रेस संसद में और अधिक प्रभावकारी भूमिका अदा करेगी, सभापति शेरबहादुर देउबा का कथन। अर्थमंत्री पुन ने कहा, बजट में उत्पादन और रोजगारी को प्राथमिकता में रखकर लाए गए हैं कार्यक्रम। और गजा क्षेत्र के आसपास मौजूद शरणार्थी शिविर पर इसराइल के हमले में कम से कम 42 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों के बीच हुई समझदारी के अनुरूप ही मौजूदा सत्ता समीकरण बरकरार रहेगी। आज काठमांडू में तमांग राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के सातवें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने ये बात कही। ये बताते हुए कि वर्तमान सत्ता समीकरण में कोई समस्या या समझदारी नहीं है और पूर्व सहमति के अनुरूप ही सत्ता समीकरण को निरंतरता मिलेगी, उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी केंद्रीय समिति की बैठक बुलाकर विशेष महाधिवेशन की तिथि तय होगी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि सरकार सुशासन, समृद्धि और सामाजिक न्याय के पक्ष में केंद्रित होकर काम कर रही है। प्रेस सेंटर कैलाली द्वारा आज धनगढ़ी में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री शर्मा ने कहा कि जनता की आशा और अपेक्षा को संबोधित करने के लिए हिसाब से सरकार अच्छे काम कर रही है और इससे जनता आशावादी है। उन्होंने कहा कि समय पर पाठ्यपुस्तक, मल खाद वितरण जैसे कामों को सरकार ने व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने इस बात का भी चर्चा की कि ललिता निवास जमीन घोटाला प्रकरण, फर्जी भूटानी शरणार्थी, सोना तस्करी कांड जैसे मामलों में भी सरकार ने अडिग होकर काम किया। अर्थमंत्री वर्षमान पुन ने कहा कि श्रम के प्रति सम्मान, उत्पादन में आत्मनिर्भरता और स्वाभिमानी नेता व कार्यकर्ता ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज नेकपा माओवादी केंद्र असम काठमांडू संपर्क समन्वय समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अर्थमंत्री पुन ने कहा कि आगामी आर्थिक वर्ष के बजट में उत्पादन और रोजगारी से जुड़े हुए कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्पादन में बढ़ोतरी महज कुछ लोगों के अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के आधार पर विकास करने के लिए होगी। इस बात का जिक्र करते हुए कि कृषि, पर्यटन, जल विद्युत, सूचना प्रविधि और उत्पादन, इन पांच क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखकर बजट लाया गया है। अर्थमंत्री पुन ने कहा कि सभी सात प्रदेशों को प्राथमिकता दी गई है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि संसद में प्रतिपक्ष की भूमिका को प्रभावकारी बनाया जाएगा। आज पश्चिम नवलपरासी की पालही नंदन गांव पालिका के महेशपुर में स्वर्गीय पृथ्वीराज कड़ेल की आधे कद की प्रतिमा के अनावरण और बस पार्क का उद्घाटन करते हुए सभापति देउवा ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए संसद में कांग्रेस की भूमिका प्रभावकारी न होने का संदेश गया है, उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस और अधिक प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत होगी। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि अगले चुनाव तक कांग्रेस को सरकार में नहीं जाना चाहिए। आज नेपाली कांग्रेस काठमांडू क्षेत्र नंबर 6 द्वारा आयोजित दूसरे प्रदेश सभा क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान महामंत्री थापा ने कहा कि पार्टी की ओर से उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को बदलना जरूरी है। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि बड़े दलों के बीच विश्वास का वातावरण तैयार नहीं हो सका है। कम्युनिस्ट आंदोलन के नेता श्रीमणि आचार्य की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में महासचिव पोखरेल ने देश की समृद्धि के लिए बड़े दलों को मिलकर काम करने का विकल्प नहीं है। नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉ बाबूराम भट्टराई ने कहा कि बूढ़ी गंडकी जल विद्युत परियोजना को बहुउद्देश्यीय परियोजना के रूप में ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आज गोरखा में एक कार्यक्रम के दौरान डॉ भट्टराई ने कहा कि परियोजना की मौजूदा अवस्था बरकरार रहने से काम के अटकने का खतरा रहेगा, इसलिए बूढ़ी गंडकी विकास प्राधिकरण गठित करके इसका निर्माण किया जाना चाहिए। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकमको फोर्जी
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको फोर्जी आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको फोर्जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। डोल्पा की सेफोकसुंडो नदी में डूबने से आज दो बच्चियों की मौत हो गई। सेफोकसुंडो गांवपालिका वार्ड नंबर 8 स्थित श्री तापरीचा माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कायकी गांवपालिका वार्ड नंबर 5 बैजी बारा की 12 वर्षीय रवीना विष्ट और 10 वर्षीय सोनी बुढ़ा की नदी में डूबने से मौत हुई की जानकारी पुलिस के हवाले से हमारे संवाददाता ने दी। उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि शांति प्रक्रिया के लिए पद्म रत्न तुलाधर का योगदान अविस्मरणीय है। आज पद्म रत्न लुमिनत गुठी द्वारा ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि भाषिक साहित्यिक आंदोलन के ही नहीं बल्कि नेपाली राजनीति की निरंकुशता के विरूद्व के आंदोलन में भी तुलाधर का योगदान महत्वपूर्ण है। तनहू की आम्बू खैरेनी गांवपालिका में जंगली मशरूम खाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक जंगली मशरूम खाने से आम्बू खैरेनी गांवपालिका वार्ड नंबर 6 हिले खर्क के 85 वर्षीय द्रोणपति गुरुंग की मौत हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इजराइल के सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को गजा के दक्षिणी शहर रफा के पास अलमवासी के फिलिस्तीनियों के टेंट पर बमबारी की है। इसमें कम से कम 42 लोग मारे गए हैं। गजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने अल जजीरा को ये जानकारी दी। इससे पहले फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि इजरायली हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग घायल हैं। यह छोटे फिलिस्तीनी क्षेत्र में नया घातक हमला था जहां इजरायल और हमास के बीच लड़ाई में सैकड़ों लोग भाग गए हैं। रफा में सिविल डिफेंस फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स ने प्रवक्ता अहमद रदवान के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने दो जगहों पर बमबारी की जानकारी दी है। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि मामले की समीक्षा की जा रही है लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमला किया था। इजरायल ने किसी अन्य हमले या उनके निशाने को लेकर कोई जानकारी भी नहीं दी है। इजरायल अक्सर कहता है कि वह हमास के लड़ाकों और ठिकानों को निशाना बनाता है। वह हमलों में आम नागरिकों की मौत को कम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इजरायल का यह भी कहना है कि आतंकवादी आबादी के बीच रहकर काम करते हैं, इसलिए हमलों में बेगुनाह लोगों की भी जान जाती है। 21 जून की घटना एक महीने के भीतर गजा में इजरायल का यह दूसरा बड़ा हमला है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्तमान सत्ता समीकरण में कोई समस्या नहीं है और समझदारी से सत्ता समीकरण को निरंतरता मिलेगी, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। नेपाली कांग्रेस संसद में और अधिक प्रभावकारी भूमिका अदा करेगी, सभापति शेर बहादुर देउवा का कथन। अर्थमंत्री पुन ने कहा, बजट में उत्पादन और रोजगारी को प्राथमिकता में रखकर लाए गए हैं कार्यक्रम। और गजा क्षेत्र के आसपास मौजूद शरणार्थी शिविर पर इजरायल के हमले में कम से कम 42 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।